नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मेलिसा पेरी की एस्केपिंग द बिल्ड ट्रैप उत्पाद प्रबंधन, संगठनात्मक रणनीति और ग्राहक केंद्रित नवाचार पर केंद्रित एक व्यावहारिक व्यवसाय पुस्तक है। इसका मुख्य तर्क है कि अनेक कंपनियां फीचर भेजने की गति को सफलता मान लेती है, जबकि असली प्रश्न ये होना चाहिए कि उत्पाद ने ग्राहक और व्यवसाय दोनों के लिए कौन सा मापनीय मूल्य बनाया। पेरी स्थिति को बिल्ड ट्रैप कहती है। इसमें टीमें समय सीमा, हितधारकों की मांगों और लंबी फीचर सूचियों के दबाव में लगातार निर्माण करती रहती है और समस्याओं की जांच, प्रयोग और प्रभाव के आकलन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। पुस्तक बताती है कि प्रभावी उत्पाद प्रबंधन केवल आवश्यकताओं को विकास टीम तक पहुंचाने का काम नहीं है। इसका काम कंपनी की व्यापक दृष्टि, आर्थिक लक्ष्यों और ग्राहकों की वास्तविक समस्याओं के बीच निर्णय लेने योग्य संबंध बनाना है। काल्पनिक कंपनी मार्केटली के उदाहरण तथा व्यावहारिक ढांचों के माध्यम से पुस्तक आउटपुट केंद्रित कार्यप्रणाली से परिणाम केंद्रित उत्पाद नेतृत्व वाले संगठन बनने का मार्ग प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बिल्ड ट्रैप में फीचर की गिनती मूल्य का विकल्प बन जाती है। बिल्ड ट्रैप तब बनता है जब संगठन सफलता को जारी किए गए फीचरों, पूरे हुए रोडमैप मदों या समय पर हुई डिलीवरी से मापता है। ये संकेतक आसान होते हैं क्योंकि इन्हें गिना जा सकता है और इनके लिए ग्राहक व्यवहार को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन किसी फीचर का बन जाना यह प्रमाण नहीं है कि उसने ग्राहक की कठिनाई घटाई, उपयोग बढ़ाया, प्रतिधारण सुधारा या व्यवसाय के आर्थिक लक्ष्य में योगदान दिया। पेरी के अनुसार यही भ्रम उत्पाद टीमों को व्यस्त तो रखता है पर उपयोगी नहीं बनाता। जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते तो नेतृत्व अक्सर अधिक फीचर बनाने का आदेश देता है। इस तरह उत्पाद डेथ साइकिल बनती है, जिसमें कम प्रभाव वाले निर्माण के जवाब में और निर्माण किया जाता है। पुस्तक का महत्वपूर्ण अंतर आउटपुट और आउटकम के बीच है। आउटपुट वह चीज है जो टीम बनाती है, जैसे नया विकल्प या स्क्रीन। आउटकम वह बदलाव है जो उसके कारण ग्राहक या व्यवसाय में आता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की दर बढ़ना। यह अंतर टीमों को केवल डिलीवरी की दक्षता से आगे समस्या की उपयोगिता और समाधान के प्रभाव पर जवाबदेह बनाता है। इसलिए बिल्ड ट्रैप से निकलना कम फीचर बनाने का आग्रह नहीं, बल्कि हर निवेश के पीछे मूल्य का स्पष्ट तर्क मांगना है। दूसरा, उत्पाद प्रबंधक का काम मांगों का आदेश लेना नहीं, समस्या को परिभाषित करना है। पुस्तक उत्पाद प्रबंधक की उस भूमिका की आलोचना करती है जिसमें वह हितधारकों, बिक्री टीमों या ग्राहकों से आई मांगों को टिकटों और विनिर्देशों में बदलकर विकास टीम को सौंप देता है। इस व्यवस्था में उत्पाद प्रबंधक निर्णयकर्ता कम और संदेशवाहक अधिक बन जाता है। पेरी का दृष्टिकोण यह है कि ग्राहक समस्या बता सकते हैं, अपनी निराशा और जरूरत व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन समाधान तय करना उत्पाद टीम की जिम्मेदारी है। किसी ग्राहक का फीचर अनुरोध उपयोगी संकेत हो सकता है, पर वह स्वतः सही उत्पाद रणनीति नहीं बन जाता। उत्पाद प्रबंधक को ग्राहक के संदर्भ, व्यवहार, बाधाओं और इच्छित प्रगति को समझना होता है। साथ ही उसे यह भी देखना पड़ता है कि कौन सी समस्या व्यवसाय के लक्ष्यों से जुड़ती है और किस अवसर में निवेश उचित है। यह भूमिका डिजाइन, इंजीनियरिंग, डेटा और व्यावसायिक पक्षों के बीच समन्वय भी मांगती है, लेकिन इसका उद्देश्य सहमति के लिए हर अनुरोध स्वीकार करना नहीं है। उद्देश्य साक्ष्य के आधार पर उचित समस्या चुनना और टीम को उसे हल करने की दिशा देना है। इसीलिए पुस्तक उत्पाद प्रबंधक को छोटे स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानने से भी बचती है। उसके पास अकेले सारे निर्णयों का स्वामित्व नहीं होता। प्रभावी उत्पाद प्रबंधन साझा विशेषज्ञता वाली टीम को स्पष्ट परिणाम, ग्राहक समझ और निर्णय का संदर्भ देता है। तीसरा, उत्पाद रणनीति दृष्टि से रोज के निर्णयों तक का सेतु बनाती है। पेरी के अनुसार रणनीति को केवल वार्षिक योजना, प्रेरक वक्तव्य या निश्चित फीचर रोडमैप समझना भूल है। उपयोगी उत्पाद रणनीति कंपनी की दृष्टि और आर्थिक उद्देश्यों को उन अवसरों से जोड़ती है जिन पर उत्पाद टीमें काम कर सकती है। दृष्टि बताती है कि संगठन दीर्घकाल में किस दिशा में जाना चाहता है। रणनीति यह स्पष्ट करती है कि वर्तमान परिस्थितियों में किन ग्राहक समस्याओं और बाजार अवसरों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर उत्पाद पहले उन प्राथमिकताओं को जांचने और आगे बढ़ाने का माध्यम बनती है। यह क्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना रणनीतिक संदर्भ के टीमें अलग अलग अनुरोधों, प्रतिस्पर्धियों के फीचरों और तात्कालिक बिक्री दबावों पर प्रतिक्रिया देती रहती है। परिणाम स्वरूप संसाधन कई दिशाओं में बंटते हैं और कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं बनता। पुस्तक रोडमैप को भी अलग ढंग से देखने को कहती है। रोडमैप को समाधान की कठोर सूची होने के बजाय दिशा, समस्या क्षेत्र और अपेक्षित परिणाम का संचार करना चाहिए। इससे नेतृत्व को प्राथमिकताओं की समझ मिलती है, जबकि टीमों को समाधान खोजने की गुंजाइश रहती है। रणनीति का अर्थ अनिश्चितता मिटाना नहीं है। इसका अर्थ यह तय करना है कि कौन सी अनिश्चितताओं को सीखने योग्य माना जाए और किन निर्णयों के लिए निवेश किया जाए। इस कारण अच्छी रणनीति स्थिर लक्ष्य और बदलते साक्ष्य दोनों के साथ काम कर सकती है। चौथा, प्रोडक्ट काटा प्रयोगों के जरिए अनुमान को सीखने में बदलता है। पुस्तक में प्रोडक्ट काटा एक पुनरावृत्त ढांचे के रूप में आता है जिसका उद्देश्य रणनीति को उत्पाद पहल के माध्यम से लागू करना है। इसका मूल विचार यह है कि टीम को सीधे समाधान बनाने के बजाय पहले वर्तमान स्थिति समझनी चाहिए, इच्छित परिणाम स्पष्ट करना चाहिए, बाधाओं की पहचान करनी चाहिए और फिर छोटे प्रयोगों से सीखना चाहिए। उत्पाद विकास में अनेक महत्वपूर्ण धारणाएं अनिश्चित होती हैं। उदाहरण के लिए यह कि कौन सा ग्राहक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है, उसके व्यवहार में बदलाव की वास्तविक रुकावट क्या है या प्रस्तावित समाधान उसे बदल पाएगा या नहीं। यदि टीम इन धारणाओं को जांचे बिना बड़े निर्माण में लग जाती है तो वह तेज डिलीवरी के बावजूद गलत दिशा में जा सकती है। प्रयोग, ग्राहक अनुसंधान, प्रोटोटाइप और मैट्रिक समीक्षा इस जोखिम को घटाने के साधन है। इनका लक्ष्य हर विचार को सिद्ध करना नहीं बल्कि जल्दी और अपेक्षाकृत कम लागत पर गलत धारणाओं को पहचानना है। पेरी इस प्रक्रिया को रणनीति से अलग गतिविधि नहीं मानती। प्रयोग तभी सार्थक है जब वह किसी स्पष्ट व्यावसायिक परिणाम और ग्राहक समस्या से जुड़ा हो। इस ढांचे में टीम प्रत्येक चरण पर पूछती है कि क्या सीखा, कौन सी बाधा शेष है और अगला सबसे उपयोगी परीक्षण क्या है। इस प्रकार निर्माण अंतिम लक्ष्य नहीं रहता बल्कि प्रमाणित सीख और मूल्य निर्माण का एक संभावित साधन बनता है। अंत में, उत्पाद नेतृत्व वाली संस्कृति के लिए अधिकार, मापदंड और प्रोत्साहन बदलने पड़ते हैं। बिल ट्रैप किसी एक कमजोर उत्पाद प्रबंधक या विकास टीम की समस्या नहीं है। पुस्तक जोर देती है कि यह अक्सर संगठन की संरचना और प्रोत्साहनों से पैदा होता है। यदि नेताओं की समीक्षा समय पर फीचर जारी करने पर होती है, बिक्री का वादा ग्राहक विशेष निर्माण पर आधारित है और टीमों के पास ग्राहक तक सीधी पहुंच नहीं है, तो परिणामों के लिए जवाबदेही अपेक्षा भर ले जाती है। उत्पाद नेतृत्व वाला संगठन बनाने के लिए नेतृत्व को दिशा और अपेक्षित आर्थिक परिणाम स्पष्ट करने होते हैं, पर हर समाधान पहले से निर्धारित नहीं करना होता। टीमों को ग्राहक अनुसंधान, डेटा, डिजाइन और तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुंच चाहिए ताकि वे समस्या को समझ और परख सके। मापदंड भी संतुलित होने चाहिए। केवल उपयोग, राजस्व या रिलीज की संख्या देखना पर्याप्त नहीं हो सकता। टीम को उस व्यवहारिक बदलाव के संकेत खोजने चाहिए जो ग्राहक मूल्य और व्यावसायिक प्रभाव के बीच संबंध दिखाए। इसी तरह विफल प्रयोग को केवल असफल डिलीवरी मानकर दंभित करना सीखने की संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। यदि साक्ष्य से समय रहते पता चलता है कि विचार काम नहीं करेगा तो यह बड़े व्यर्थ निवेश को रोक सकता है। पुस्तक का व्यापक संदेश है कि उत्पाद संस्कृति घोषणाओं से नहीं बदलती। वह निर्णय अधिकार, टीम संरचना, संचार, मापन और पुरस्कार की उन व्यवस्थाओं से बदलती है जो लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार को आकार देती है। निष्कर्ष में, एस्केपिंग द बिल्ट लैब विशेष रूप से उत्पाद प्रबंधकों, डिजाइनरों, इंजीनियरिंग नेताओं, संस्थापकों और उन व्यावसायिक नेताओं के लिए उपयोगी है जो बार बार फीचर जारी करने के बावजूद ग्राहक प्रभाव या व्यावसायिक प्रगति न देख पाने की समस्या से जूझ रहे हैं। नए उत्पाद प्रबंधकों को यह भूमिका की बुनियादी स्पष्टता देता है, जबकि अनुभवी पाठकों और नेताओं के लिए इसका मूल्य संगठनात्मक बाधाओं की पहचान में है। पुस्तक बताती है कि बेहतर उत्पाद केवल कुशल विकास प्रक्रिया से नहीं बनते, उनके लिए सही समस्या चयन, ग्राहक की निरंतर समझ, परिणामों के माप और रणनीति के साथ जुड़ा प्रयोग आवश्यक है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक अपनी टीम की भाषा बदल सकते हैं, जैसे फीचर सूची की जगह समस्या, अनुमान, अपेक्षित व्यावहारिक बदलाव और मापदंड पर चर्चा करना। हालांकि पुस्तक के कुछ ढांचे निर्देशात्मक लग सकते हैं और हर विषय का अत्यंत गहरा तकनीकी विवेचन नहीं करते, फिर भी इसकी ताकत व्यापक दृष्टि में है। अनेक उत्पाद प्रबंधन पुस्तकें व्यक्तिगत कौशल, खोज विधियों या रोडमैप पर अलग अलग केंद्रित रहती है। पेरी इन तत्वों को उत्पाद प्रबंधक की भूमिका, कंपनी रणनीति, प्रयोग प्रक्रिया और संगठनात्मक संस्कृति के एक संयुक्त तंत्र में रखती है। काल्पनिक उदाहरणों के माध्यम से यह भी स्पष्ट करती है कि खराब निर्णय अक्सर व्यक्तिगत अक्षमता नहीं बल्कि आउटपुट को पुरस्कृत करने वाली व्यवस्था का परिणाम होते हैं। इसलिए यह पुस्तक केवल फीचर प्राथमिकता की मार्गदर्शिका नहीं बल्कि मूल्य केंद्रित उत्पाद संगठन की कार्यप्रणाली को समझने का सुसंगत परिचय है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मेलिसा पेरी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।